ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणालललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ चाकर
हरे
और बोलो
हरे कृष्णा
बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हमें तो कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्यों गूंगे हैं सभी? अरे भगवान का नाम देने के लिए तो जीभ दी है, शर्म क्यों आती है? बोलो जोर से
हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे।
जो नहीं बोले ना तो मेंढक की तरह दूसरा जन्म मिलेगा मैं ना जाएंगे। यहाँ सभी वैष्णव भक्त उपस्थित हैं, जानकर हमें काफी आनंद हो रहा है। आज हम भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को उपदेश के रूप में राम जी की लीला दर्शाते हुए थोड़े ही शब्द में सारे रामायण समझा दिए। ज्यादातर लोग रामायण का पाठ 9 दिन तक करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या समझ आई क्या नहीं आई, कौन पूछने वाला है, कौन देखने वाला है। जिन लोगों के जीवन का उद्धार यदि इतनी रामायण सुनकर तो हो ही जाना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों की भक्ति का भी विकास नहीं हो रहा है, बल्कि पीछे हट हो रही है। तो इतनी रामायण सुनने का फायदा क्या? कथा सुनी फूटिया कान तो ये न आयु ब्रह्म ज्ञान। हमारे कान भी फूट जाते हैं इतनी कथा सुनते हैं, फिर भी भगवान के बारे में कुछ पता नहीं चला, न तो अपने जीवन में ऐसी दिव्यता का चमत्कार हुआ कि हमारा आत्मा का स्वभाव दिव्य होते भी वो ढक जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए तो भगवान उतार लेते हैं, उसे बाहर निकालने के लिए हमें भक्ति देते हैं। क्योंकि आत्मा भगवान की अंश है, ये शरीर तो लौंदा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो रोटी खाकर बना है तो रोटी से तो रोटी ही पैदा होती है, आत्मा थोड़ी रोटी से पैदा हो सकती है। शरीर भी रोटी है जो दूसरे जीवों का आहार होता है। जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पर जीने का आधार रखता है। आत्मा को जीने के लिए तो सिर्फ भगवान पर आधार रखना होता है। ये आत्मा इतनी जीवंत होती है कि निर्जीव शरीर को भी जीवंत करती है, और वो जब चली जाती है तो शरीर निर्जीव का निर्जीव रहता है। उसमें ना तो कोई हलन चलन होता है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो सड़ने लगता है जब आत्मा चली जाती है। जब आत्मा रहती है तो कभी सड़ती है? सड़ सकती है, कभी बीमारी में सड़ती है ना, कुछ लगा हो तो दुर्गंध मार्ग में लगता है शरीर, जहां से खून बसा हो। ये बताने के लिए कि ये शरीर हम नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आत्मा का मूल स्वभाव ये शरीर की रोटी पर ज्यादा आसक्ति न रखते हैं तभी ही जागृत होता है, नहीं तो कभी नहीं होता। हमारी जड़ शरीर को जड़ इंद्रियां सिर्फ अपने काम भोग के लिए ही जो व्यस्त रहते हैं, वो जड़ता के अलावा कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, जीवन का आनंद की तो बात ही नहीं, आनंद की कोई उसको अनुभव भी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति कर सकता है लेकिन पिटाई के लिए ही कर सकता है। जितनी इंद्रिय तृप्ति ज्यादा उतनी मृत्यु नजदीक होती है, ये नियम होता है, नियम का कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो रामचंद्र जी ने कहा, मनुष्य हम आपको मर्यादा सिखाते हैं कि हमें किस ढंग से मर्यादा में रहकर उत्तम चरित्र का पालन करना चाहिए, परम सत्य का पालन करना चाहिए। परम सत्य भगवान होते हैं स्वयं, सिर्फ वचन ही उनके सत्य नहीं बल्कि इनके अद्भुत कर्म भी सत्य होते हैं। और जो भक्त उनका कहा मानकर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए यदि जीता है तो वो भक्त कहलाता है। भक्ति ही एकमात्र ऐसा कर्तव्य बनता है जो सत्य होता है, बाकी ज्ञान भी झूठा रहता है। आज हम आपके यहाँ आ रहे तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चार पुरुषार्थ हासिल करना होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म की शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी होती है, धार्मिक नियमों मनुष्य के लिए बनाए गए हैं कि मर्यादा में रहे। तो धर्म सिर्फ मान्यता के लिए नहीं बताया है, मर्यादा का पालन करने के लिए धर्म है। इसलिए रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए और हमें कैसे धर्म का पालन करना है उसको सिखा जाते हैं। अर्थ और काम, जब धर्म में जो आज्ञाएं हैं, जो अनुशीलन है, जो जिसको कहते हैं हम उसका पालन करते हैं नियमों का, तो वो नियमों का पालन करते हम यदि अर्थ और काम की प्रवृत्ति कर सकते हैं तो वो भी मर्यादा में। और मर्यादा में पालन करते हम मोक्ष के प्रति हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन मोक्ष के बाद की गति में तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म या जो जो मान्यता लेकर बैठा है, जो जो धर्म के नियम यदि तेरी भक्ति में विकास नहीं कर पाते इसलिए तो सबका त्याग करके मेरे अकेले की शरणागति वाला ही धर्म स्वीकार, मेरे अकेले की शरणागति वाला धर्म स्वीकार, क्योंकि मैं तुझे सत्य रूप से कहता हूं कि तुझे सारे पापों से मैं मुक्त करा दूंगा। यानी कि धर्म का पालन करते करते भी यदि हमारा यदि जो विकास नहीं होता तो ऐसे धर्म की आवश्यकता क्या है। मनुष्य अपनी अपनी मति से धर्म बनाता है, यानी कि मान्यता, मति, मन, मान्यता, ये सब एक ही चीज है। ये बुद्धि के अलावा जो जो बातें हैं ये सब मन द्वारा रची गई है। जो बुद्धि का उपयोग नहीं करता और मन की धारणाओं के अनुसार काम करता है तो ये किसी का भी सुनता नहीं, चाहे भगवान भी उसके सामने आकर कुछ कहें तो सुनेगा नहीं। और भगवान कहते कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ऐसी बात है, सही बात बताते हैं। भगवान को जो धर्म उसका विकास नहीं कर रहा है, भक्ति तरफ ले जाता नहीं, तो समझो ये सब बेकार है, ये धर्म धर्म नहीं है। धर्म का पालन या धर्म के कानूनों का पालन इसीलिए करना चाहिए कि हम मर्यादा में रहें। जो अर्थ और काम की मर्यादा भी होती है, हम अनियंत्रित अमर्यादित इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं कर सकते। हमारी इच्छा सफल न हो से पहले मृत्यु आ जाती है, नहीं कि मन की मन में रह जाती है और भूत बनकर कहीं चिपकना पड़ता है, क्योंकि अपनी इंद्रियों को संतोष नहीं। इंद्रियों को संतोष कब होता है पता है? इंद्रियों की स्वामी जो भगवान होते हैं इनकी सेवा करने से ही संतोष होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम श्लोक में यह बताया कि अतः पुंदी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनतिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम्। भगवान का संतोष, भगवान की तृप्ति के लिए यदि हम अपने अपने जो गुण और कर्म के विभाग के अनुसार हमारा जो सुचित कर्म है वो करके यदि चलते हैं तो भगवान को संतोष प्राप्त होता है। जो भगवान को संतोष प्राप्त होता है तो उसके सैंपल, उसका अंश आत्मा को क्यों नहीं प्राप्त होता? तो भगवान की बातें और भक्तों की बातें एक सरखी ही होनी चाहिए, जो अपने मूल स्वभाव पर आने की। तो रामचंद्र जी कहते कि मनुष्य चाहे लाख उपाय करें, वो अपना विस्तार चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर भी क्यों नहीं करना चाहता है, लेकिन ये सब फोकट व्यवहार है, वो कभी सफल नहीं होता है। न तो कोई चंद्रमा पे गया है न कहीं गया है, और उसके लिए तो भारी चुनौती, चैलेंज मिल रही है, ये सब झूठा दावा है। और हमें लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा ये सरकारी तरक्के से हो रहा है। तो कहने का मतलब है मनुष्य अपनी मर्यादा में रहकर, मर्यादा का उल्लंघन किए बिना भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए जो धार्मिक नियम हमें मर्यादा में आगे बढ़ाता नहीं, मर्यादा का पालन करके हमें भक्ति का विकास नहीं कराता, तो ऐसे धर्म सारे छोड़ने को कह रहे हैं भगवान कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यानी कि भक्ति ही धर्म है, भगवान का धर्म भक्ति कहलाती है। और भगवान की अनुकूलता देखकर हमें वो भक्ति का धर्म पालन करना होता है, नहीं कि अपनी मनमानी भक्ति करें। तो परीक्षित महाराज की इच्छा भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तम चरित्र जानने की थी, लेकिन 7 दिन में कम से कम 5 दिन बीत चुके थे। पहले 9 स्कंध में भगवत तत्व यानी कि भगवान का परम सत्य जाना, भगवान की लीलाओं ये 9वें स्कंध में अभी शुरू होती है, 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आएंगी। तो 9वें स्कंध में भगवान रामचंद्र का ये चरित्र आता है, यानी कि 7 दिन परीक्षित महाराज जिएंगे, उसमें 5 दिन तो चल चुके हैं, तो ये 2 दिन में सारी कथा कैसे कर पाएंगे, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक नियमों का पालन करते यदि हमें अध्यात्म तक अपने आत्मा तक पहुंचाने की शक्ति यानी कि वो विकास जब हो रहा है, तब जड़तापूर्वक नियमों पालन करना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति में ऐसे जुड़े रहो जो 24 घंटे का व्यवसाय बन जाता है, 24 घंटे का बाग बन जाता है। तो ऐसा मनुष्य यहाँ ऋषि जैसे राजा परीक्षित महाराज थे, और सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे परीक्षित, तू आज तक बहुत सारी कथाएं बारंबार सुन चुका है, रामायण भी तू बहुत बार सुन चुका है। अरे उस समय भी रामायण चलती थी, जब भागवत हो रही है तो भागवत में रामायण आ रही है, क्योंकि वैसे रामायण की कथा बहुत कालों से प्रचलित थी, वो त्रेता युग में थी, त्रेता युग करीबन 1,70,00,000 साल का होता है, जब रामचंद्र जी का ये उदात्त जीवन चरित्र हमें मिल रहा है। तो भगवान रामचंद्र जी के लिए परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र जी के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुष द्वारा किया जाता है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, यानी कि जो साधु परम सत्य रामचंद्र जी के बारे में जानता न हो, समझा नहीं सकता, तो उसके मुख में से कथा सुनने का कोई इरादा ही नहीं करना चाहिए। आजकल तो साधु क्या रामचरित मानस इत्यादि जो कई पुस्तकें लिखी गई उसमें भी इतना प्रदूषण हुआ है, तो कल हम नांदी में उसके लिए लेक्चर दे रहे थे, कौन सी हाई स्कूल में था, विवेकानंद, तो वहाँ हमने इस पर चर्चा की, तो लोगों ने स्वीकारा, हाँ महाराज सही है, इतना प्रदूषण रामायण में घुसा दिया है, उसे क्या फायदा, इसीलिए विकास नहीं होता। जब गोलमोल बातें होती है जो शास्त्र में न तो इसका संदर्भ मिलता है न कुछ नहीं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिसने सत्य का परिचय किया है उसके द्वारा सुनना चाहिए, जिसे वास्तविक लाभ हो। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र जी के विषय में बारंबार सुन चुके हो, इसीलिए मैं संक्षेप में इन कार्यकलाप का वर्णन करूंगा, कृपया उनसे सुनिए कि संक्षेप में यानी कि छोटे कह देना सब कुछ, और वो भी सुनाना सुनो, ओ हम तो सब जानते थे, नहीं कुछ नहीं जानते हैं, भगवान का एक कार्यकलाप एक सीधी साधी लीला भी जानने में हमें तकलीफ होती, क्योंकि भगवान हमारे जैसे नहीं है, इसलिए भगवान हमारे जैसे रोटी से बने हुए शरीर के नहीं है, इनका शरीर आध्यात्मिक होता है, दिव्य होता है, सच्चिदानंद गुणों से भरा है, हमारा असत अचित निरानंद गुणों का शरीर है, उल्टा ही है, दिखा दे देता हूं का सरीखा, लेकिन उन दोनों शरीर के स्वभाव अलग अलग होते हैं। तो भगवान के दिव्य कार्यकलाप को हम ये ऐसे शरीर वाले कैसे जाने, उसके लिए भक्ति करके अपने शरीर की स्वच्छता इत्यादि करनी होती है, पवित्रता लानी होती है, और हम भगवान की दिव्यता को समझ सके। तो वैसे अपने पिता के वचनों को अक्षत यानी कि जैसे कैकेयी को दिए थे उसे बनाए रखे भगवान रामचंद्र जी ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि वे सीता के हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के चरण कमल इतने कोमल थे जो सीता की हथेलियों का स्पर्श भी नहीं सहन कर सकते थे। सीता तो सेवा करने गई थी भगवान की, हाँ, और भगवान नंगे पांव चल रहे हैं, खड़ाव लेकर नहीं गए थे, खड़ाव तो भरत को सौंप के गए थे। रामचंद्र जी ने कितने कष्ट उठाए होंगे, और इनके चरण कमल, कमल तो कितना कोमल होता है, उनकी पंखुड़ियां कितनी सुंदर होती है, और ऐसे कमल जैसी उपमा वाले चरण कमल भगवान के कितने कोमल होंगे। तो कांटे पत्थर इत्यादि लगकर क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो जब भक्ति से हमें ये पहचान सकते हैं कि ये कोमलता का भाव हमारे में कैसे आवे, जब मांस खाने वाले हैं, जब हम ये नशाबाजी करते हैं, तो हमारे में कोमलता चली जाती है और भगवान के चरित्र को समझने में हमें ताकत ही नहीं होती। तो इस सीता की हथेलियां का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते थे, इतने कोमल थे। ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी ने कुछ नहीं सहन किया, कहने का मतलब है इस इन शब्दों में जो भाव है, ये भाव की महत्ता भगवान की भक्ति के द्वारा आती है। यानी कि सीता देवी का स्पर्श भगवान के ऐसे कष्ट सहन की चरण कमल को यदि स्पर्श करता है तो सीता का स्पर्श होते ही भगवान को काफी सराहना होनी चाहिए कि ये दुखावा या जो कुछ दर्द है वो मिट जाना चाहिए। इतना सीता की हथेली की भी बहुत कोमलता होती है, लेकिन नहीं, सीता की सेवा भी बहुत प्रामाणिक रूप से बनी है, फिर भी भगवान की महत्ता ऐसी है कि अपने भक्त अपनी ही शक्ति सीता देवी के हथेलियों का स्पर्श भी नहीं सहन कर पाते थे। कितनी कोमलता भगवान के चरण कमल में बताई होगी। ऐसा नहीं कि भगवान पुरुष है इसलिए कठोर हृदय वाले हैं, नहीं नहीं, भगवान का प्रेम इतना मृदु होता है, वो दोनों माँ और बाप दोनों का काम करते हैं। सीता तो उसकी सेविका है, उसकी शक्ति है, शक्ति हमेशा शक्तिमान की सेवा करती है, वो स्वतंत्र नहीं रहती। चाहे सीता कितनी भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी रक्षा की आवश्यकता बनी रही थी और बनी ही रहनी चाहिए। कोई स्त्री इस ढंग से अपने मनमाने ढंग से यदि स्वतंत्र बनना चाहती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर सकती, न तो धर्म उसकी रक्षा कर सकता। तो ये उदाहरण, इसलिए सीता ने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया है। उसने लक्ष्मण रेखा बनाई थी, वो लांघ कर चली गई, ऐसा बताया है, लेकिन वो तो माया सीता है। भगवान की अंतरंग शक्ति कभी भगवान का वचन का या भगवान के संदेश या भगवान का आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन भगवान की लीला में साथ देने के लिए भगवान की इच्छा के अनुसार वो उसने लक्ष्मण रेखा का भंग किया था। लेकिन उसकी वजह यह हुई कि भगवान अपने दिव्य कार्यकलापो आगे बढ़ा रहे। भगवान की शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है, भौतिक शक्ति भी भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं करती। मया जक्षेन प्रकृति सुयति सचराचरम हेतु नाने न कौंते जगत भी परिवर्तते। इस भौतिक जगत की सृष्टि जो अधिष्ठात्री है दुर्गा देवी, वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार काम कर रही है। उसका जिम्मेदारी है कि मूर्ख मनुष्यों को पीटना, दुख देना, तीन प्रकार से दुख देती है। एक आध्यात्मिक भाव से, यानी कि खुद की गलती से दुख होता है, दूसरा कोई पार्टनर दे जाता है, यानी कि दूसरी व्यक्ति के द्वारा होता है, और तीसरा है कुदरती प्रकोप के द्वारा होता है। तो तीनों ताप तीन त्रिशूल के समान बनता है, इसलिए दुर्गा के हाथ में त्रिशूल है शिव जी, वही परिवार के हाथ में त्रिशूल है, दूसरे परिवार के हाथ में त्रिशूल नहीं होता। इनकी जिम्मेदारी है, भगवान की इच्छा ये है कि जो दूषित मनुष्य है, जो अपना धर्म नहीं जानते, सिर्फ धार्मिकता का दिखावा करते हैं, उसको कभी ऊपर भी उठने नहीं देते। त्रिशूल ही पहले चेकअप करते हैं। तो सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान या सुग्रीव भी थे। ये जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। भगवान थकते हैं कभी, फिर भी भक्ति में भक्त का भाव है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान की थकान मिटाऊं, भगवान को मैं कैसे राजी करूं। सुपर्णा का कि नाक तथा कान काट करके उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। भगवान और भगवान की शक्ति दोनों एक दूसरे कभी विलग नहीं हो सकती, किसी में ताकत नहीं है कि सीता देवी को रामचंद्र जी से अलग कर सकें। सीता देवी का यदि क्रोध इतना भयंकर होता है कि रावण तुरंत ही मर जाता, तो दो दृष्टि से हम देख सकते हैं कि रावण जो उठा गया वो असली सीता न होनी चाहिए, वो माया सीता हो सकती है। रावण को सकपट कृपा करके उसकी इच्छा पूर्ण करने देते हैं। सकपट यानी कुछ कपट होना चाहिए, कपट पता है ना, चीटिंग। तो माया देवी कपट करके रावण की इच्छा पूरी करने के लिए सीता का हरण कर सकते हैं, सकपट कृपा। यानी कि सीता देवी रावण समझ रहा है कि वो उठा जा रहा है, वो जीत गया, रामचंद्र जी को विरह में उसे पागल बना देगा, लड़ने आएगा तो मैं उसको मारकर सीता का उपभोग करूंगा, यही तो इच्छा थी। दुष्टों की इच्छा क्या है, भगवान की शक्ति ले लो और भगवान को मारो। माने मुझे भगवान की कृपा शक्ति चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, ऐसा ही दुष्ट विचार करते, मेरे घर में लक्ष्मी आए लेकिन नारायण की कोई आवश्यकता नहीं है, सही ना। हम रावण हैं, रावण हमारे में ही पड़ा है, हमें इंद्रिय तृप्ति दे दो भगवान, आप साइड में देखा करो हम क्या कर रहे हैं, हम विषय भोग करते रहे भगवान, थैंक यू वेरी मच, दखल मत करना, ऐसा भाव रावण का है। रावण जानता है, ऐसा नहीं कि रावण नहीं जानता, पहले भी मर चुका है भगवान के हाथों से। तो सीता देवी का जो यदि इतना क्रोध होता तो रावण कब का मर चुका था, लेकिन उसने भगवान की इच्छा जानकर माया सीता का रूप ले लिए और लक्ष्मण रेखा का भी भंग करके रावण को उठा जाने दिया। जैसे भगवान उनका दिव्य चरित्र बताने में सफल हो, इनको मौका मिल जाए, नहीं तो रामायण अधूरी रहती, वहीं वहीं खत्म हो जाती। सीता ने मार दिया, सीता में बहुत ताकत है लेकिन भगवान को साथ दे रही है, ये उसकी भक्ति है। भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त भगवान का काम करता है, अपनी मनमानी नहीं करता। जो भक्त नहीं है वो अपनी इच्छा आगे रखता है, भगवान को समझता नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं वो नहीं समझता है, तो भगवान की इच्छा कैसे जाने। पोथी पढ़े पंडित भया, क्या बोलते हैं ना, पोथी पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ गए यानी कि ये बारंबार रामलीला पढ़ के हम खत्म हो जाते हैं, जग मुआ सारा जगत खत्म हो गया लेकिन कोई पंडित नहीं भया, कोई पंडित नहीं हुआ। यानी कि पंडित कौन होता है, जो सत और असत का विवेक जानने वाला होता है, परम सत्य क्या है उसका आग्रही पंडित होता है। आजकल के पंडित तो सिर्फ पैसे के लालची है, वास्तव में भगवान के भगत नहीं है, वो रावण है। चाहे आप मांस खाते रहो, दारू पीते रहो, रंडीबाजी करते रहो, पंडित आएगा अरे रामायण रखो, रामायण पढ़ो, बहुत हो गया, हनुमान जी आपकी चाकरी करेंगे सिर्फ रामायण रखने के कारण। अरे ये पंडित नहीं है, भगवान की कोई सेवा नहीं है उसकी, न तो कोई किसी का उद्धार कर सकता है ऐसे व्यक्ति। तो भगवान भी छूट गए, भगवान की शक्ति कभी भगवान से अविलग नहीं हो सकती। लेकिन यहां भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए हैं, तो उसके पीछे जो भावार्थ है वो समझे। अतएव रामचंद्र जी ने अपनी बौहें तान कर क्रुद्ध हुए और सागर को डिराया, जिसने भगवान को अपना ऊपर होकर पुल बनाने की अनुमति दे दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दामनल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सबकी रक्षा करें। ये एक ही श्लोक में सारा समझाया, आगे बहुत सीखने के लिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो हम आप सबसे विनंती करते हैं कि सिर्फ पाठ के बजाय अभ्यास भी करें। पाठ करने का एक फल होता है, अभ्यास का दूसरा। पाठ करते शायद पुण्य कमाओगे, लेकिन यदि इंद्रिय तृप्ति और बेकाबू धार्मिक नियमों के अनुसार न करने से, जैसे हाथी स्वच्छ जल में स्नान करता है बाहर जमीन पर आकर धोबी फेंकता है, ऐसा स्नान होता है कि हम रामायण का पाठ करें लेकिन गलत व्यवहार रामायण की बात करें, पाठ के बाद हम गलत व्यवहार करते हैं। हम ताव्य नहीं गए थे तो हमने रामायण के बारे में समझाया, लोग हाँ हाँ करते रहे, लेकिन जैसे हमने खत्म किया लोग कावा खाने लगे, फट 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 फट। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, तो ये तो यहाँ का रीत रिवाज है। मैंने कहा काहे का रीत रिवाज है, किसने समझाया कि ये करने का, और वो भी मंदिर में। तो कहने का मतलब है ये सब दूषण आता है, कोई इस ढंग से समझा जाता है कि करो कोई दिक्कत नहीं। तब हमने रिसर्च की, हमने ढूंढ निकाला कि कहाँ ये सड़ा है। तो आप ताज्जुब करोगे, ये सड़ा है स्वयं ये वाल्मीकि, ये जो तुलसीकृत रामचरित मानस है उसमें नहीं, तुलसी के लेखन में नहीं है, ये समझाने वाले के लेखन में निकला है। देखो तुलसी 1631 में रामायण रच गए, सही, उसके बाद 1908 में कोई गोपाल दास करके पैदा हुआ, यानी कि आज से 100 साल पहले गोपाल दास करके पैदा हुआ। वो कोई भोजपुर का रहने वाला है ऐसा बताया जाता है, और उसने मेरे पास लिखा है, देखो तो सही क्या कह रहे हैं। हाँ, एक गोपाल दास, उनका पिता का नाम पूरण दास था, फ्रॉम भोजनगर, भोजनगर, उसने रामायण का महात्म्य लिखा। उसमें बहुत सारी अटपटी बातें बताई, उसमें यह भी लिखा है कि जिस पापी के घर रामायण पड़ी हो, चाहे वो मांस खाता हो या शराब पीता हो, उसके घर हनुमान जी चौकीदारी करेंगे और यमदूत नहीं आ सकते, ऐसा लिखा है। ये तो धर्म के विरुद्ध, धर्म के कानूनों के विरुद्ध, यानी कि ऐसा लिखने वाला इनका न तो कोई प्रमाण है न कहीं, लेकिन लिख के गया है। और ये रामायण महात्म्य में बताते हैं, शास्त्र के नियम के अनुसार जब ये शास्त्र पहले रखते हैं उसे पहला उसका महात्म्य छप जाता है, महात्म्य पहले आता है बाद में शास्त्र बनता है। पद्म पुराण श्रीमद् भागवत से पहले लिखा गया है, वो पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। वाल्मीकि रामायण का महात्म्य भी अन्य शास्त्रों में लिखा गया है, सही, लेकिन ये वही वाल्मीकि जो त्रेता युग में हो गए, ये कलयुग में तुलसी बनकर आए फिर से दूसरा रामायण करने के लिए, ऐसा लिखा है महात्म्य। और वो भी तुलसी चले जाने के बाद उसका महात्म्य लिखा गया, यानी कि तुलसीदास से भी ये महात्म्य लिखने वाला कोई ज्यादा अकलमंद होना चाहिए, जो ये गारंटी देता है कि जिसके घर में मांस पकता है शराब पीते हैं ऐसे पापी के घर यदि रामायण पड़ी हो, पढ़ता है नहीं पढ़ता है वो तो बाकी की बात, लेकिन जिसके घर रामायण पढ़ी रही हो उसके घर हनुमान जी चौकीदारी करेंगे। क्या हनुमान जी नौकर हैं? पापी के घर कहीं चौकीदारी करने आते हैं? यदि भक्त हो तो हनुमान जी मिल सकते हैं, लेकिन पापी कोई भक्त नहीं हो सकता। पापी जब पाप छोड़कर भगवान की शरणागत होता है तब भगवान उसे स्वीकारते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव ही संबंधव्य सम्यक व्यवसो तो ही सा। ये भगवदगीता में दृष्टि। इसीलिए जब पाप वृत्ति चालू रहती है और रामायण चालू रहता है तो ये स्वच्छ जल रामायण के पवित्र जल में स्नान कर हम फिर से विषय वासना की धूल फेंकते हैं तो हम गंदे के ही गंदे रहेंगे, भगवान को हम उसके तरफ पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो चौकीदारी की बात ही क्या है? यमदूत नहीं आएंगे तो जाएंगे कहां? तो अजामिल की स्टोरी उसने लिखी है जो श्रीमद् भागवत में आती है। तो अजामिल का वृत्तांत कहकर ये तुलसीदास की रामायण के लिए भी ऐसा चरित्र निरूपण किया है कि एक पापी था, उसके घर में रामायण पड़ी थी, लेकिन मरते समय उसके यहां आए हैं यमदूत उसको ले जाने के लिए, लेकिन तुरंत ही रामायण का प्रभाव उसके घर में था, इसलिए विष्णुदूत आए और उसको डांट मारी कि खबरदार यमदूत तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसके घर रामायण पड़ी है। तो वो विष्णुदूत घबरा के अपने मालिक के पास यमराज के पास, ये यम देवता भी काफी घबराने लगा, ओ उसके घर मत जाओ, हमें अधिकार नहीं, इनके घर रामायण पड़ी है। ऐसी महत्ता बताने वाला ये कुछ न तो धर्म जानता है न भक्ति जानता। यदि जिस धर्म में भक्ति का एक एक छिटके बराबर नहीं होता है तो वो धर्म नहीं है। छल धर्म, उपधर्म, विधर्म, कुट धर्म, ये सब कैतव धर्म कहलाते हैं। विशुद्ध शास्त्र में जहां भक्ति का ही निरूपण है वहां ऐसे धर्मों की बात नहीं आती, उसे तो छोड़ने को कहा। भगवद गीता में भगवान अंतिम उपदेश ये देकर गए अर्जुन को कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, सारी मान्यताओं को छोड़कर मेरे अकेले की शरण आ। जो भगवान की शरण नहीं दिलाता वो कोई धर्म नहीं है। भगवान का धर्म भगवान की शरण दिलाने वाला ही होना चाहिए। मान्यता का धर्म नहीं है, क्योंकि भगवान गारंटी देते हैं सारे पापों से मुक्ति करते हैं, और ये पापी पापी रहना चाहता तो कैसे बन सकता है। और जहां ये भगवद गीता खत्म हुई वहां श्रीमद भागवत शुरू हो जाता है कि धर्मो प्रज्जित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस धर्म पुस्तक में सारे कैतव धर्म यानी कि चीटिंग रिलीजियंस, चीटिंग जिसको भगवान गिवअप करने को कह रहे हैं, इनको मारो गोली, यहां कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। ये एक विशुद्ध शास्त्र है जहां सिर्फ भगवान के प्रेम पाने की ही बात, जो मोक्ष के बाद की बात है। तो मनुष्य को चार पुरुषार्थ में धार्मिकता का अंत भक्ति में आता है। धर्म के पालनों का अर्थ भक्ति करना, भक्ति ही एकमात्र धर्म है। जहां भक्ति नहीं दिखावा है तो वहां कुछ सड़ा होगा। ये सड़ा को दूर करने के लिए भगवान का नाम यश कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। इसलिए बोलो दिल खोल से, बोलोगे हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।
Hare
Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare Hare,
Hare Ram,
Hare Ram,
Hare Ram,
Hare Ram,
Ram Ram,
Ram Ram,
Hare Hare,
Hare Hare.
इसमें कोई खर्चा हुआ? हाँ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन भक्ति की शुरुआत हो जाएगी. लेकिन नियमित रूप से आप माला करो. एक बार जो भगवान का नाम लेता है वो पापी भी वैष्णव कहलाता है. हाँ, लेकिन सच्चा वैष्णव नहीं, झूठा वैष्णव कहलाता है, वैष्णव प्राय. पाप छोड़ देता है फिर भी भगवान का नाम नहीं लेता है तो भगवान से ईर्ष्या चालू रहती है. लेकिन जो नियमित रूप से नाम लेता है वो आदर्श बन सकता है. नियम यानी कि मर्यादा, संकल्प और नियम दोनों साथ साथ में ऐसा काम करता है जो बुद्धि का विषय है, मनोधर्म का विषय नहीं है. हमें बुद्धि का उपयोग करना है तो बुद्धि से हम यदि संकल्प करें कि हर रोज हम चार माला से शुरुआत करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र गाकर अपना अपनी भक्ति आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे. बोलो मंजूर है? तब हम इतने दूर बारंबार आया करेंगे और आगे आगे सारी रामायण खत्म करेंगे. लेकिन इतने एक श्लोक में यदि हम इतना समय लेते हैं तो हमें नौ दिन भी बहुत कम पड़ेंगे. लेकिन कहा है कि नष्ट प्रायेशो बद्रेशु नित्यम भागवत सेवया. जो नित्यम भगवान, भगवान का पुस्तक भागवत या रामायण, इनकी जो नित्य या भक्तों की नित्य सेवा करता है तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी. भगवान श्री कृष्ण या रामचंद्र दोनों में कोई अंतर नहीं, उसमें नैष्ठिकी भक्ति पैदा होगी. नैष्ठिकी भक्ति यानी ये भक्ति कभी गिराने वाली नहीं है. निष्ठापूर्वक हम आगे बनकर भगवत धाम पहुंचने के लिए सक्षम बनते हैं. तो नित्यम भागवत सेवा, हर रोज कम से कम आप लोग चार माला से शुरू करो. करेंगे? क्या विचार है? हमें वापस बुलाना है? यदि कोई किसी को लगा हो कि हम बहुत कड़वा बोलते हैं तो हमें वापस बुलाना है. माता जी आप तो बोलती ही नहीं कोई. अरे जबरदस्ती से कोई बुलाता है क्या? हम जबरदस्ती नहीं करते लेकिन स्पष्ट बात करते हैं. हम भगवान को राजी करने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि भक्ति में तो भगवान राजी करना है. एक को यदि राजी करो तो सारी दुनिया राजी हो जाएगी. एक को संतोष दो सारी दुनिया संतोष है. एक को भी नहीं कर सकते तो किसको करेंगे? किसी को नहीं कर पाते. लेकिन एक मुख्य जो है भगवान है जिसके लिए अपना जीवन बनना है. हर एक जीव भगवान का अंश है तो जीवन उनसे है तो पहली जिम्मेदारी भगवान को राजी करने. बच्चा पैदा होता है माँ बाप उनको भगवान के दर्शन के लिए सर्वप्रथम बाहर निकालते हैं तो सर्वप्रथम भगवान के दर्शन कराते हैं क्योंकि उसका उसकी अमानत है. बुलझावे या ये तो बेवकूफी है, ये नाता कभी भूल नहीं सकते. आप सभी धार्मिक पुरुष हैं लेकिन धार्मिक नियमों का पालन करके हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। एक अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे, लेकिन समूह में ही कर सकते हैं। जैसे आप समूह में देखो कितना बढ़िया आयोजन किया है कि यहाँ एकत्र मिलकर इतने कोने में भी भक्ति का भाव बताते हैं, लेकिन बताना और वास्तविक प्रगति करना बहुत अंतर होता है। हम यहाँ बैठे बैठे भी भगवान के पास पहुंच सकते हैं, इंडिया ही जाना है ऐसा नहीं। तो ये भक्ति का जो उपाय है आप अपनाओ। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र कम से कम आप चार माला से शुरू करो। हम कम से कम 16 माला तक लोगों को उत्साह देते हैं, क्योंकि बाकी के 8 घंटे देखो कितने भगवान की याद में जाएंगे। तो हुए 10 घंटे का हिसाब, बाकी 14 घंटा आपका। लेकिन इससे जीवन सफर बन जाएगा। तो कंजूस मत रहिए, दिल खोल के भगवान का नाम लेने के लिए आप तैयारी बताएं। आपने माला दी है इन लोगों को? अरे आप प्रेसिडेंट साहब को पूछो। कंजूस मत रहिए, माला दो तो वो भी कंजूस नहीं रहेंगे भगवान का नाम देने में, सही ना? बोलो कितने लोग तैयार माला करते हैं अभी? कितने लोग माला करते हैं भगवान के नाम? हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, छुपे दोस्तों है, तो 1, 2, 3, 4 भाइयों नाक कटेगी जरा, हाथ ऊंचा करो। तो चलो कितने करेंगे अभी, हाथ ऊंचा करो। वाह, 1, 2 और कितने करेंगे भगवान के नाम का जप माला? 1, 2 चलो चलो, सब कंजूस रहे हैं। क्यों, क्या खर्चा हो जाएगा? हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सामने से दे सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम के लिए ही देंगे। भगवान नहीं चाहिए।